पृष्ठ संख्या 28। आधारभूत परिवर्तन 1885 से 1920। कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी का प्रतिशत। वर्ष 1885 कृषि 42.1%, उद्योग 7%। वर्ष 1895 कृषि 37.0%, उद्योग 8.9%। वर्ष 1905 कृषि 31.6%, उद्योग 12.6%। वर्ष 1915 कृषि 30.7%, उद्योग 19.4%। वर्ष 1920 कृषि 27.3%, उद्योग 18.6%। इस दौरान कुल घरेलू उत्पादनों जीडीपी में कृषि का योगदान तीव्र गति से कम हुआ तथा उद्योगों की भागीदारी काफी बढ़ी। इस परिवर्तन की मुख्य बात यह है कि यह केवल 30 वर्षों के अंदर आया। कपड़ा उद्योग इस काल का मुख्य उद्योग था। तोकुगावा काल में सूत एवं रेशम कताई और बुनाई की जाती थी। यह कार्य आमतौर पर कृषक परिवारों की महिलाओं द्वारा किया जाता था। मेजी पुनः स्थापन से कुछ वर्ष पहले जापान का पश्चिम से व्यापार आरंभ हुआ। रेशम के कीड़ों तथा रेशम की विदेशों में काफी मांग थी। इस काल के दौरान एक महामारी फैल जाने के कारण यूरोप में रेशम के उत्पादन में काफी कमी हो गई थी। इसके फलस्वरूप जापानी रेशम की मांग और भी बढ़ गई। अब अधिक से अधिक जापानी इस उद्योग की ओर आकर्षित होने लगे। जल्दी से जल्दी अत्यधिक मात्रा में रेशम पाने के लिए उसका मशीनीकरण किया गया। अच्छी किस्म के रेशम के कीड़े भी उपलब्ध किए गए। जब बाद में यूरोप में रेशम उत्पादन बढ़ा, तब जापान ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए उच्च किस्म की मशीनों के प्रयोग द्वारा रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया। इस काल में रेशम विदेशी मुद्रा कमाने का मुख्य साधन था। जब जापान के द्वारों को 1855 में विदेशियों के लिए खोल दिया गया, तो बाहर से उच्च किस्म का और सस्ता सूत तथा कपड़ा आयात होने लगा। जापानी सरकार इस प्रकार की वस्तुओं को भारी आयात शुल्क लगाकर जापान में आने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि असमान संधियों के अंतर्गत वह अधिक आयात शुल्क वसूल नहीं कर सकती थी। बड़ी मात्रा में सूत और कपड़े के आयात के कारण विदेशी मुद्रा बेकार जा रही थी। इस विदेशी सूत और कपड़ों के आयात द्वारा दी गई चुनौती का सामना जापान ने सूत उद्योग का तीव्र गति से मशीनीकरण करके किया। थोड़े समय में ही जापान का सूती उद्योग विदेशी चुनौती का सामना करने में समर्थ हो गया। अब न केवल इस काल में बल्कि बाद में भी सूत उद्योग जापान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। यह सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग था, जिसमें दूसरे उद्योगों की तुलना में सबसे अधिक मजदूर कार्य करते थे। कपड़ा उद्योग, जिसमें रेशम और सूत दोनों शामिल थे, जापान के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने लगा। इस उद्योग के द्वारा मशीनीकरण का भी सबसे अधिक विस्तार हुआ। इस काल में समुद्री उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ साथ तकनीकी उन्नति भी हुई। जापानी सरकार ने सैन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भी इस उद्योग की ओर ध्यान दिया। 1897 से 1913 के काल में सरकारी सहायता का 75% भाग इसी उद्योग में लगाया गया। 1910 तक जापान ने इस उद्योग को इतना विकसित कर लिया था कि वह अपने लगभग सभी सैनिक जहाज और आधे से ज्यादा भाप से चलने वाले जहाज बनाने लगा था। लौह एवं इस्पात उद्योग ने भी इस काल में तीव्र गति से उन्नति की। औद्योगिक उत्पादन में मशीनों के प्रयोग से भारी वृद्धि हुई। विदेशों से मशीनों के आयात में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई। कृषि में भी प्रभावशाली उन्नति हुई। इस काल में अधिक पैदावार देने वाली चावल की कई किस्में तैयार की गई। पश्चिम में बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती के लिए विकसित विज्ञान और कला पर आधारित पाठ्यक्रम वाले कई कृषि कॉलेज खोले गए। चूंकि जापान में जमीन के निजी टुकड़ों का आकार छोटा था और पश्चिमी मशीनें बड़े पैमाने पर होने वाली खेती के लिए बनाई गई थी, इसलिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय ने उन्हीं मशीनों को प्रोत्साहित किया जो जापानी कृषि संबंधी पर्यावरण एवं देश के साधनों से मेल खाती हो। इसी काल में कृषि उत्पादन में औसतन 2% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। यह वृद्धि जापान की खाद्य सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इस वृद्धि के कारण मूल्यों को भी बढ़ने से रोका जा सका। कृषि में चावल मुख्य उत्पादन था, रेशम उत्पादन को दूसरा स्थान प्राप्त था। औद्योगिकीकरण में कृषि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जबकि कृषि क्षेत्र से काफ़ी श्रमिक उद्योग क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। खाद्य पदार्थों के आयात की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई। दूसरी ओर रेशम और कपड़े जैसे कृषि उत्पादनों के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इसी विदेशी मुद्रा का प्रयोग विदेशी मशीनें खरीदने में किया गया। सरकारी आमदनी का मुख्य साधन भी भूमि कर ही था, हालांकि यह धीरे धीरे कम होता गया। दो युद्धों के बीच का काल 1918 से 1937। इस काल में जापान ने विपथगामी विकास के दौर में प्रवेश किया। उद्योग एवं कृषि दोनों की प्रगति रुक गई। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा उद्योग को मिला प्रोत्साहन अधिक देर ना चल सका। 1918 के चावल दंगों, राइस रायट्स ऑफ 1918 के बाद कृषि की उन्नति रुक गई। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी कई कठिनाइयां पैदा हो गई। इस काल को विपथगामी काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस काल के उत्तर भाग में भले ही कुछ तीव्र औद्योगिक गतिविधियां हुई, लेकिन फिर भी यह कहना मुश्किल होगा कि उन्होंने आर्थिक विकास में कोई योगदान दिया। यह गतिविधियां अधिकतर युद्ध से संबंधित थी और इसलिए प्रजा की भलाई में उनका कोई योगदान नहीं रहा। सरकारी नीतियां भी इस काल के दौरान सेना के नियंत्रण में आ गई थी। आरंभ में प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी व्यापार को धक्का पहुंचा, लेकिन जल्दी ही परिस्थितियां सुधर गईं। 1920 की वसंत ऋतु तक आर्थिक स्थिति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। एशिया में प्रथम विश्व युद्ध के कारण कोई विशेष तनाव पैदा नहीं हुआ था। इस समय जापान का सैन्य खर्च कोई विशेष रूप से नहीं बढ़ा। इस काल में जापान के सामने अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाने के कई मौके आए। इसका मुख्य कारण यह था कि यूरोप युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त था। जापान असला प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र बन गया। जापानी जहाज़ों की मांग भी काफ़ी बढ़ी। जापानी कपड़ों की भी विदेशों में मांग बढ़ गई। जापान के लिए विदेशी बाजारों का खूब विस्तार हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि जापान विदेशी बाजारों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार की स्थिति 1920 में बदल गई। इसके पश्चात भी कुछ उद्योग धंधों का विकास चलता रहा। इनमें से एक विद्युत उद्योग था। इस उद्योग ने दो युद्धों के बीच के काल में जापान के औद्योगिकीकरण में भारी योगदान दिया था। भाप के स्थान पर विद्युत के प्रयोग से लागत में 50% कमी आई। इससे जापानी उद्योग में विद्युत शक्ति की जबरदस्त मांग बढ़ी। इस क्षेत्र में विकास तकनीकी उन्नति के कारण भी संभव हुआ। 1915 से लेकर 1940 तक बिजली की खपत 221.7 करोड़ किलोवाट से बढ़कर 3456.6 करोड़ किलोवाट हो गई। इसी काल में बिजली और कोयले के मूल्यों का अनुपात 2.23% से गिरकर 0.83% हो गया। 1926 और 1936 के बीच उद्योग में बिजली की खपत तिगुनी हो गई। इससे सबसे अधिक बिजली की खपत क्रमशः रसायन उद्योग, धातु उद्योग, खानों तथा कपड़ा उद्योग में होती थी। 1929 तक लगभग 87% उद्योगों में बिजली से चलने वाली मशीनों का प्रयोग होने लगा था। उद्योगों में बिजली के प्रयोग से दो मुख्य लाभ हुआ। पहला, बिजली के प्रयोग से उत्पादन के पहले के ढंगों का आधुनिकीकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ, ताकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग को पूरा किया जा सके। अब हाथ से चलाए जाने वाले करघों की जगह मोटर से चलने वाले करघा इस्तेमाल होने लगे, तथा हाथ से किए जाने वाले कई कार्य बिजली से चलने वाले खराद से किए जाने लगे। सस्ती बिजली उपलब्ध होने के कारण बिजली से चलने वाली विदेशी मशीनरी बड़ी आसानी से देश में प्रचलित हो गई। पश्चिम में मशीनरी की खोज से उपभोक्ता वस्तुएं पैदा करने की वजह से औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, लेकिन जापान में बिजली के विस्तृत प्रयोग से उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के नए उपाय उत्पन्न हुए और इसके फलस्वरूप औद्योगिक परिवर्तन आया। दूसरा लाभ यह हुआ कि कई उद्योगों में बिजली एक मुख्य निवेश बन गई, जैसे कि बिजली पर आधारित रसायन एवं शुद्धिकरण के उद्योग। जहाँ भी बिजली स्टेशनों की स्थापना की जाती थी, वहाँ पर आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा होने लगती थी। इसी आधिक्य बिजली के प्रयोग के लिए भी कई उद्योगों की स्थापना हुई। इस काल में भारी एवं रसायन उद्योगों ने भी काफ़ी उन्नति की। भारी उद्योगों में इस्पात तथा मशीनरी उद्योग शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने भारी और रसायन उद्योगों में भारी मात्रा में पूंजी लगाई थी, क्योंकि युद्ध के दौरान आयात पर असर पड़ा था। युद्ध के बाद इस पूंजी निवेश का काफ़ी फायदा हुआ। 1915 के करीब भारी और रसायन उद्योगों का उत्पादन जापान के सभी उद्योगों के कुल उत्पादन का लगभग 29% था। यह 1920 में 33% हो गया। फिर युद्ध के बाद व्यापार खुलने के कारण 1925 में 24%, 1935 में 44%, 1940 में बढ़कर 59% हो गया।